शरीर की ऊंचाई जो है वो धीरे धीरे घटती जाती है, परिग्रह तो घटता ही जाता है, शरीर की ऊंचाई भी घटती चली जाती है। और मान कषाय के उदय से उत्पन्न होने वाला जो अहंकार है,
शरीर का आकार घटता जाता है,
हाइट घटती,
ओनली हाइट,
वो दिए इन्होंने कि शरीर की हाइट कम हो जाती और अहंकार जो है अभिमान कम होता चला जाता है। यद्यपि ऊपर के देवों में गमन करने की शक्ति ज्यादा ज्यादा है, पर एक देश से दूसरे देश में जाकर के और क्रीड़ा इत्यादि करने की जो लालसा है वो धीरे धीरे इनके कम होती जाती। शरीर की ऊंचाई जो घटती जाती है उसका क्रम दिया है कि सौधर्म ईशान इन दो स्वर्गों के देवों का शरीर तो सात हाथ ऊंचा होता है, फिर वो सानत कुमार महेंद्र में पहुंच के छह हाथ हो जाता है, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतों का पुष्टि चार स्वर्गों में पांच हाथ रह जाता है, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार में चार हाथ रह जाता है, आनत प्राणत में साढ़े तीन हाथ, आरण अच्युत में तीन हाथ। इस तरह से सोलहवें स्वर्ग तक पहुंचते पहुंचते तीन हाथ रह जाता है, सात हाथ से लेके कम हो गया। अधो ग्रहवेयक जो है, तीन ग्रहवेयक है, अधो ग्रहवेयक, मध्य ग्रहवेयक और ऊर्ध्व ग्रहवेयक, तीन तीन ग्रहवेयक है, तो ढाई हाथ, दो हाथ और डेढ़ हाथ, और जो नौ अनुदेश उनमें भी डेढ़ हाथ, और जो पांच अनुत्तर रह गए विजय वैजयंत जयंत पराजित और सर्वार्थ सिद्धि, इनमें सिर्फ एक हाथ की होता
है। देखा है ना, पर वो एक हाथ का भी कितना शरीर रहेगा,
छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर रहता है।
अच्छा,
बालक गत जो है वो मालूम पड़ते हैं, तो उनका वैभव और सब चीजें, कुमार जैसे तो रहते ही यंग एकदम, तो वो बहुत सुंदर मालूम पड़ता है एक हाथ होने पर। ऊपर ऊपर परिग्रह कम होता है, ये तो अपन चर्चा कर ही चुके हैं, और कषाय की मंदता होने से ऊपर ऊपर अभिमान भी जो है वो कम होता चला जाता है। इस तरह से इन सब की कमी होती है। इसमें एक बात और इन्होंने दी है कि जिनकी जितनी कषाय मंद होती वे ही जीव उतने ऊंचे स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, ये बात भी इसमें अच्छी है। इनमें लिखा है कि असैनी बिना मन वाले जो पंचेंद्री हैं, त्रियंच हैं, वे अपने शुभ परिणामों से भवनवासी व्यंतर देवों तक ही उत्पन्न हो सकते हैं, और जो संगी जीव हैं कर्म भूमि के त्रियंच, वे मिथ्या दृष्टि हो तो वे भी भवनत्रक में ही जन्म लेते हैं, सम्यक दृष्टि हो तो फिर वो पहले दूसरे स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि कर्म भूमि के मनुष्य जो मिथ्या दृष्टि या सासाधन सम्यक दृष्टि जो भी हो, मैंने मिथ्या से युक्त हैं, वे भवनवासी से लेकर के उपरिम ग्रहवेयक तक जा सकते हैं, उनकी लेश्या विशुद्धि की वजह से वे उतने ऊंचे चले जाते हैं। पर जो द्रव्य से भी जिन लिंग को धारण करते हैं वे ही ग्रहवेयक तक जा सकते, मैंने बाह्य में महाव्रत तो धारण करना पड़ेगा उतनी ऊंचाई पर जाने के लिए। अब अभी मिथ्या दृष्टि भी जिन भगवान का रूप धारण करके तप के द्वारा उपरिम ग्रहवेयक तक जा सकता है। ये जो परिव्राजक इत्यादि है तपस्वी, वो मर करके पांचवें स्वर्ग तक जाते हैं। जो आजीवक संप्रदाय वाले हैं वे बारहवें स्वर्ग तक चले जाते हैं, उनके साधु बारहवें स्वर्ग से ऊपर अन्य लिंग वाले साधु उत्पन्न नहीं हो सकते, जिन लिंग ही धारण करना पड़े, ये इसमें दिया है। इस तरह से और भावलिंगी हो तो सर्वार्थ सिद्धि तक चले जाते हैं, श्रावक जो है पहले से लेके सोलहवें स्वर्ग तक ही जन्म लेता है। इस तरह इनने ये बताने की कोशिश की है कि जैसी जैसी कषाय की मंदता होती है वैसे वैसे ऊपर के स्वर्गों में जन्म होता है। अब वैमानिक देवों में जो लेश्या है वो किस तरह है, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेशु, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों में पीत लेश्या है, सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों में पीत और पद्म दोनों लेश्याएं शुरू हो जाती है वहां से आकर के, और फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतों का पुष्प ये चार है, इनमें तो प्योर पद्मलेश्या रहेगी, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार में पद्म और शुक्ल का भी अंश वहां आ जाता है, ये ट्रांजिशन है, इसलिए उसमें शुक्ल भी आ गई, बाकी फिर जो बचे उन सब में शुक्लेश्या होती है, अनुदिश और अनुत्तर विमान जो है उनमें तो परम शुक्लेश्या होती। इस तरह से पीत पद्म शुक्लेश्या द्वि त्रि शेषेशु, द्वि से इनने ले लिया पहले के दो सौधर्म और ईशान, फिर तीन कौन से ले लिए बाद के, उनमें प्योर पद्म लेश्या रहेगी, पद्म बीच से शुरू हो जाएगी। हालांकि देखो सौधर्म ईशान का एक हो गया, सानत कुमार महेंद्र का ये दो कहलाएंगे, एक पेयर हो गई सौधर्म ईशान, एक पेयर हो गई सानत कुमार महेंद्र, इनमें तो रहेगी पीतलेश्या मुख्य रूप से, पद्मलेश्या भी आ जाती है, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतों का पिष्ट और शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार तीन पेयर ये हो गई। तो इन तीन पेयर में पद्मलेशिया बाद बाद में शुक्लेशिया ऐड हो जाती है। फिर शेषेशु मतलब जितने फिर शेष बचे उन सब में शुक्लेशिया ऐसा सूत्रकार लगा लें।
बढ़ती बढ़ती जाती है।
फिर कल्प संख्या किसकी है? एक कल्पोत्पन्न होते हैं, एक कल्पातीत होते हैं, दो प्रकार के वैमानिक देव हैं। तो कल्प किसे कहते हैं? कहते प्राग्रैवे के व्या कल्पा ग्रैवीय चौधर्म से लेकर के ग्रैवीय के पहले पहले अर्थात 16 स्वर्ग तक की संज्ञा कल्प संज्ञा है। कल्प इसलिए है क्योंकि वहां पर इंद्र सामानिक त्रायस्त्रुंस इत्यादि की कल्पना की जाती है। देवों में भी इस तरह का ग्रेडेशन होता है और इसके ऊपर जो 16 स्वर्ग के ऊपर है वे सब एक ही ग्रेड के अहम इंद्र, वे सब इंद्र की हैसियत के हैं। इसलिए कल्प की संज्ञा 16 स्वर्ग तक ही मिली है। अब जो एक विशेष बात रह गई वैमानिक देवों में कि लोकांतिक देव भी वैमानिक देव हैं, उनका लेकिन क्वालिटी अलग है, तो उसके लिए अलग से
लोकांतिक देव पांचवे स्वर्ग पर ही
ब्रह्म लोकालया लौकांतिका ब्रह्म लोक नाम के पांचवें स्वर्ग में रहने वाले देव लोकांतिक कहलाते। इनका लोकांतिक नाम सार्थक है क्योंकि लोक यानी जो ब्रह्म लोक है उसके अंत में रहते हैं इसलिए लोकांतिक है। दूसरा एक अर्थ हो लिया है लोक का अर्थ संसार, तो जिनके संसार का अंत निकट आ गया है वे भी लोकांतिक देव होते हैं। ये लोकांतिक देव मर करके और एक मनुष्य का जन्म ले करके मोक्ष प्राप्त
कर लेते हैं लोकांतिक देव।
इसलिए इनको
मतलब पांचवें स्वर्ग में जाके भी एकदम इतनी विशुद्धि आ जाती है कि एक भवातारी ही है
पांचवें स्वर्ग। वैसे तो अपन देखें कि जो सौधर्म इंद्र है वो पहले स्वर्ग का है, हाँ, एक भवावतारी है।
प्रभु तुम्हारा जी इंद्र है, देव तो नहीं है।
हाँ, ये देव इसलिए स्पेशल हैं, ये इसलिए इनका वर्णन अलग से दे रहे हैं कि वैमानिक देव में भी जो लोकांतिक देव हैं वे लोकांतिक देव देवर्षि कहलाते हैं। इनके देवांगना इत्यादि नहीं होती है।
अच्छा।
हाँ, और ये मुनि बन करके ही संलेखना पूर्वक मरण करके ही वहां पहुंच पाते हैं। भले ही वे पांचवें स्वर्ग में हों लेकिन उनको स्पेशल क्वालिटी
ज्यादा रहती है। हाँ।
लोकांतिक की स्पेशल उनको एक ग्रेड मिली हुई है, वे सामान्य ब्रह्म स्वर्ग के देव नहीं है, वे लोकांतिक है। जैसे कि वहां सामान्य देव पहले स्वर्ग वाला एक भवतारी नहीं होता लेकिन उसका जो इंद्र है सौधर्म वो एक लोकांतिक देव कितने प्रकार के हैं? सारस्वतादित्य वन्य ऋण गर्द तो तुषिता व्याबाधार स्टाश्च सारस्वत आदित्य वंडी अरुण गर्द तो तुषित अव्याबाध और अरिष्ट। ये आठ प्रकार के लोकांतिक देव हैं। ये आठों दिशाओं में क्रम से रहते हैं, ये सब स्वतंत्र हैं, किसी इंद्र इत्यादि के अधीन नहीं है, सब समान है, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये चूंकि पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त रहते हैं इसलिए इनको देवर्षि कहते हैं। अन्य देवों में भी इनकी प्रतिष्ठा बहुत होती है। ये 14 पूर्व यानी द्वादशांग के पाठी होते हैं और जब तीर्थंकर को वैराग होता है तो उनकी प्रशंसा करने के उद्देश्य से आते हैं, बाकी अपने वहीं विमान में रहते हैं। जो देव मनुष्य के दो भाव धारण करके फिर मोक्ष चले जाते हैं उनकी क्या स्थिति है? तो विजयादिशु द्विचर्मा है। जो देव आमिंद्र होने के साथ साथ जन्म से ही सम्यक दृष्टि होते हैं उनका यहाँ पर आदि से लिया है, द्वि विजयादिशु आदि शब्द से ये लिया। तो विजय वैजयंत जयंत पराजित और नो अनुदिश विमानों के अहमिंद्र देव मनुष्य के दो भाव लेकर के और मोक्ष चले जाते हैं, यानी विजयादिक से विजय वैजयंत इत्यादि से चय होकर के मनुष्य बनेंगे, फिर संयम धारण करके और फिर विजय इत्यादि उसमें जन्म लेंगे और फिर वहां से आकर मनुष्य बनेंगे और मोक्ष चले जाएंगे।
स्वर्ग में उनकी स्थिति ऊंची है
विजय,
लेकिन फिर भी दो भाव
लेते
हैं। और लोकांतिक देव उनकी नीची है लेकिन फिर भी वो एक भाव में चले जाते हैं।
अपन इसलिए ये नहीं लगाएं कि ऊंचे स्वर्ग वाला तो है,
कषाय तो उनकी मंद
है कषाय, लेकिन कषाय का मंद होना और कषाय का क्षय करना इन दोनों
अलग अलग
फर्क है। अब अगर अपन ऐसा करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। भगवान ऋषभ देव को अपने कर्मों को क्षय करने में 1000 वर्ष लगे और उनको अंतर मुहूर्त में हो गया, तो क्या उनकी सामर्थ्य कम थी क्या भरत चक्रवर्ती से? नहीं, वो नहीं है। किसने कितने समय में किया ये उसका अपना
पुण्य है।
इसमें एक बात और विशेष है कि जो अनुदेश और चार अनुत्तर हैं उनमें एक गौ धारण करके भी मोक्ष जा सकते हैं। ये बात इन्हें लिख दी इसमें कि ऐसा नहीं है कि ये दो भाव में ही जाएंगे, एक भाव में भी जा सकते हैं। यहाँ अधिक से अधिक दो भाव बताए हैं, इसलिए सर्वार सिद्धि का ग्रहण यहाँ नहीं किया है। सर्वार सिद्धि में तो देव उत्कृष्ट से एक ही भाव में चले जाते हैं, और यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि इनमें एक का नियम नहीं है पर दो का तो नियम है। जाना चाहें तो विजय वैजयंत इत्यादि वाले एक भाव में भी जा सकते हैं मोक्ष, लेकिन नियम नहीं बनाएंगे। नियम तो सर्वार सिद्धि के लिए बना है, पर दो का नियम तो इनके लिए भी है। दो से ज्यादा नहीं लगेंगे इनको, इतनी बड़ी बात हो गई। मैंने 16 स्वर्ग का कोई जीव जाना चाहे तो एक भाव में मोक्ष चला जा सकता है, लेकिन कोई नियम नहीं है उसका कि एक में जाएगा कि दो में। इनका तो नियम बना रहे हैं, इसलिए आप इसको विशेष रूप से कि भाई दो में तो आपको जाना ही पड़ेगा, जाएंगे ही आप, इतना तो पुण्य है। एक में भी जा सकते
हैं, मैक्सिमम है,
मैक्सिमम तो। एक चीज और लिखी कि सर्वार सिद्धि के देव, लोकांतिक देव और सब दक्षिणेंद्र, मतलब सौधर्म ईशान में से सौधर्म, सानत कुमार महेंद्र में से सानत कुमार, ये दक्षिणेंद्र कहलाते हैं ये सब। और सौधर्म स्वर्ग के जो लोकपाल होते हैं वे सब, इंद्राणी जो सची है, वो सब एक मनुष्य भाव के बाद, ये नियम है। और भी कोई जाए तो जाए,
पर इनको जाना
तो नहीं। औपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियज्ञो नयः, जितने उत्पाद जन्म लेने वाले देव नारकी हैं और मनुष्य, और मनुष्य इनके सिवाय जितने संसारी जीव हैं वे सब त्रियंश। बताइए देव नारकी और मनुष्य को छोड़कर जो दिख रहे हैं वो सब त्रियंश है, एक इंद्री से लेके बंद। इसलिए एक इंद्री जीव भी त्रियंश है, सब लोक में पाए जाते हैं, इसलिए उनका त्रियंश का कोई अलग से लोक बताया नहीं गया है। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण दीप शोषानाम सागरूपम त्रिपल्योपम आर्धहीन मिना। अब सबकी जो है आयु बताते हैं, भवन वासी देवों की आयु कितनी है। तो असुर कुमार की एक सागर है, नाग कुमार की तीन पल्ल है, सुपर्ण कुमार की ढाई पल्ल है, दीप कुमार की आयु दो पल्ल है, बाकी के छह कुमारों की आयु डेढ़ डेढ़ पल्ल है। ये इनकी उत्कृष्ट आयु हो गई। सौधर्म ईशानियों सागरूप में अधिके, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु दो सागर से कुछ अधिक होती है। मैं इसमें और कोई विशेषता नहीं बताना चाह रहा हूँ, कोई आवश्यक नहीं है, इतना ही पर्याप्त है। सानत कुमार महेंद्र योग सप्त, सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु सात सागर से कुछ अधिक है। त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश विरधिकानि तु, सात सागर में क्रम से तीन जोड़ो तो दस सागर हो गए, फिर सात जोड़ो तो इस तरह से जो है सात नौ तेरह ग्यारह तेरह और पंद्रह जोड़ने से आगे की छह कल्पों की उत्कृष्ट आयु निकल आती है। मतलब सात सागर आयु है सानत कुमार और महेंद्र की उत्कृष्ट, उसमें कितने जोड़ दो तीन, तो दस हो गई ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर की। और जो तीन है जो सात है उसमें सात जोड़ना है तो लांतो कापिष्ट में चौदह सागर कुछ अधिक हो जाएगी, शुक्र महाशुक्र में सोलह सागर कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु है, सकार सहस्रार में कुछ अधिक अठारह सागर, आनत प्राणत में बीस सागर और आरणच्युत में सोलहवें स्वर्ग में बाईस सागर। इस तरह से सोलह स्वर्ग तक बाईस सागर होती है। अब कल्पातीत की क्या आयु है। आरना चुता दूर्ध में कई के नव सुग्रैवे केशु विजयादिशु सर्वार सिद्ध उचा। आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर जो नौ ग्रह व्यक हैं उनमें एक एक सागर आयु बढ़ती जाती है। पहले सागर में तेईस पहले ग्रह व्यक में तेईस हो गई और अंतिम में इकतीस हो जाएगी। नौ ग्रह व्यक में नौ बढ़ गई, एक एक करके एक एक सागर बढ़ती जाएगी। बत्तीस सागर की आयु अनुगेश विमानों की होती है, इसमें एक और बढ़ गई थी, नौ अनुगेश तो नौ में बत्तीस सागर हो गए। और एक सागर अधिक और कर दो तो तैतीस सागर की आयु विजयादिक विमानों में है। सर्वार सिद्धि की तो तैतीस सागर की ही है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती। अब वैमानिक देवों की जो उत्कृष्ट आयु कही तो अब उनकी जघन्य भी कहो तो कहती अपरा पल्लोपम अधिकम। सौधर्म ईशान स्वर्ग में देवों की जघन्य आयु एक पल्ले से कुछ अधिक होती है। परता परता पूर्वा पूर्वानंतरा, नीचे नीचे के स्वर्गों में जो उत्कृष्ट आयु है वही वही ऊपर के स्वर्गों में जघन्य आयु होती चली जाती। सौधर्म ईशान में दो सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु है, सुसानत कुमार और महेंद्र की वो जघन्य आयु हो जाएगी। और सानत कुमार महेंद्र की जो सात सागर की उत्कृष्ट आयु है वो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की जघन हो जाए, इस तरह से सब कल्प और कल्पातीत में जान लेना चाहिए। अब नारकी जीवों की तो उत्कृष्ट आयु पहले कही गई है तीसरे अध्याय में, पर जघन आयु नहीं कही थी, तो यहाँ कहते कि नार का नाम चाहे द्वितीय आदिशु, दूसरी आदि पृथ्वी में जो पृथ्वी में भी जो ऊपर ऊपर उत्कृष्ट आयु है वो उसके नीचे नीचे पृथ्वियों की जघन आयु बनती जाती। मैंने जो अपन ने रत्न प्रभा में एक सागर की उत्कृष्ट आयु पढ़ी थी तो वो सर्करा प्रभा में जघन आयु हो जाएगी, और सर्करा प्रभा में जो तीन सागर की उत्कृष्ट आयु है वो बालुका प्रभा की जघन आयु हो जाएगी, इस तरह सात में नरक तक ये चलेगा। अब कहते कि जो पहले पहली पृथ्वी है नरक की उसकी तो आपने बताई नहीं, उसकी उत्कृष्ट बता दी और वो आगे की जघन बन जाएगी, पर उसकी जघन क्या है? कहते 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमाएं, तो पहली पृथ्वी के नारकियों की जघन आयु 10,000 वर्ष रहेगी, भवनवासी की भवनेशु चा, और 10,000 वर्ष ही भवनवासी देवों की रहेगी, व्यंता नाम चा, व्यंतरों की भी आयु जघन 10,000 वर्ष रहेगी। उत्कृष्ट कितनी रहेगी व्यंतरों की? तो कहते परापल्लोकम अधिकम, व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ल से कुछ अधिक होती है, और ज्योतिष का नाम चा, ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु भी एक पल्ल से कुछ अधिक होती है, तदष्ट भागो परा, ज्योतिषी देवों की जो जघन आयु है वो पल्ल के 8वें भाग हो जाती। इस तरह से इनने संक्षेप में सूत्रों में सबकी आयु जघन और उत्कृष्ट बता दी। लोकांतिक देवों की अलग से बता रहे हैं कि लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपाणि सर्वेषां, सब लोकांतिक देवों की आयु 8 सागर होती है और शरीर जो है 5 हाथ ऊंचा होता है, शुक्ल रेश शयन के रहती। अब देखिएगा 5वें ब्रह्म स्वर्ग में तो पीत और पद्मलेश है, लेकिन इनके शुक्ल निश्चय होती है, इसलिए इनका 5वें स्वर्ग से कोई संबंध नहीं है, ये 5वें स्वर्ग से पृथक जो है अंत में रहते हैं, तो इनमें ये विशेष ही है,
मतलब एक अलग से क्लास हो गया। 5वें स्वर्ग में जगह जरूर है लेकिन वो अलग से क्लास हो गया,
उसको अपन ये ना माने कि वो 5वें स्वर्ग के ही है।
ठीक,
सम्यक दर्शन के विषयभूत जो जीवादि 7 तत्व है उसमें से जीव तत्व का कथन तो अपन कर चुके जो कि 4 अध्यायों में हुआ। अब ये जो 5वां अध्याय है उसमें
मुख्य रूप से अजीव तत्व का ही कथन इसमें है। तो सबसे पहले अजीव के भेद कितने हैं ये बता रहे हैं। ठीक है, चलवान
अजीव काया धर्मा धर्माकाश उद्गला, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, ये 4 अजीव हैं और काय भी हैं। वास्तव में अजीव द्रव्य तो 5 है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, लेकिन यहां पर धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल इन 4 अजीव द्रव्यों को कहने का आशय यह है कि ये बहुप्रदेशी हैं और काल बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए हमने 5 अजीव होते हुए भी बहुप्रदेशी जो 4 अजीव हैं उनको यहाँ पर संग्रहित किया है। इसलिए अजीव काया, अकेले अजीव नहीं कहा, अजीव काया अर्थात ऐसे अजीव जो बहुप्रदेशी हैं वो 4 हैं, धर्म अधर्म आकाश और उद्गल। काल द्रव्य को यहाँ पर शामिल नहीं किया है, उसके लिए अलग से सूत्र 39 नंबर का बनाएंगे जहाँ की उसका प्रूपण करेंगे।
महाराज क्या प्रदेश माने बहुप्रदेशी का मतलब?
बहुप्रदेशी का मतलब ये है कि वो आकाश के असंख्यात प्रदेशों को घेरता है, पुद्गल तो असंख्यात प्रदेशी भी है, संख्यात भी है और अनंत प्रदेशी भी है, धर्म अधर्म ये दोनों असंख्यात प्रदेशी है, काल अनंत प्रदेशी है। एक परमाणु मंद गति से नहीं, एक परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। तो इस तरह से धर्म अधर्म आदि असंख्यात प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है, उद्गल संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी है, इस तरह ये सब बहुप्रदेशी कहलाएंगे। और काल चूंकि एक प्रदेश वाला है, एक एक कालाणु एक एक लोक के प्रदेश पर स्थित है, इसलिए असंख्यात कालाणु असंख्यात प्रदेशों पर लोक के स्थित हैं, इसलिए कालाणु एक प्रदेशी है, उसे अजीव होते हुए भी बहुप्रदेशी के साथ नहीं रखा है। जैसे पंचास्तिक आय की चर्चा चलती है, तो जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये पांच अस्तिकाएं हैं। अब अस्तिकाएं और द्रव्य में क्या अंतर है? तो कहते द्रव्य में तो काल भी द्रव्य है, लेकिन काल अस्तिकाएं नहीं है, क्योंकि वो एक प्रदेशी है। जो बहुप्रदेशी है उनको अस्तिकाय कहते हैं। वही बात यहां पर भी इन्होंने ली है कि छह द्रव्यों में पांच अजीव द्रव्य है, एक जीव द्रव्य है, लेकिन उन पांच अजीव द्रव्यों में भी चार अजीव द्रव्य तो अस्तिकाय है पर एक जो है वो अस्तिकाय नहीं है। इसलिए यहाँ पर पहले ही सूत्र में अजीव काया धर्मा धर्माकाश उद्गला ये कहकर के इसका वर्णन किया है। धर्म द्रव्य जो कि चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहयोगी होता है, अधर्म द्रव्य जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहयोगी होता है, आकाश जो समस्त द्रव्यों को अवकाश देने में सहायक है और जिसमें रूप रस गंध और स्पर्श ये चार गुण पाए जाते हैं वो पुद्गल है। द्रव्यानि ये धर्म अधर्म आदि जो है अजीव काय तो है ही पर ये द्रव्य है। जीवाश्च तो क्या जीव भी द्रव्य है? ऐसा प्रश्न उठा तो कहना पड़ा जीवाश्च, कोई ये ना समझे कि ये ही द्रव्य है, तो फिर एक अलग सूत्र बना दिया कि जीव भी द्रव्य है। और द्रव्य का स्वरूप क्या है? तो नित्यावस्थितान्य रूपान्य, द्रव्य नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। ये सामान्य रूप से द्रव्य का कथन कर दिया है। द्रव्य में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, एक विशेष गुण होता है और एक सामान्य गुण होता है। जैसे कि सामान्य गुण तो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, प्रमेयत्व, इस तरह के ये सामान्य गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। और जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से पृथक करे, डिस्टिंग्विश करे, तो वो जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या पिकुलियर प्रॉपर्टी है वो विशेष गुण उसका कहना है। तो धर्म द्रव्य का विशेष गुण तो गति में सहायक होना है और सामान्य गुण उसका अस्तित्व है, वस्तित्व है, ये इस तरह से। इसी तरह सब द्रव्यों में सामान्य और विशेष गुण पाए जाते हैं। तो सभी द्रव्यों में जिन गुणों का कभी नाश नहीं होता है वे सामान्य गुण पाए जाते हैं। कभी भी चाहे विशेष गुण भी क्यों ना, सॉरी, विशेष और सामान्य किसी भी गुण का अभाव नहीं होता, यही उसका नित्यपना है। यहाँ इतनी चर्चा करने के पीछे तात्पर्य क्या था कि द्रव्य का जो स्वभाव है वो स्वभाव हमेशा बना रहता है, उसके गुण ज्यों के त्यों बने रहते हैं, ये उसका नित्यपना है द्रव्य का। और द्रव्य की संख्या निश्चित है, छह हैं तो छह ही रहेंगे, पांच और सात नहीं होंगे। और अवस्थित है, अवस्थित का अर्थ ही संख्या निश्चित हो, सॉरी, ये संख्या जो है घटती बढ़ती नहीं है, ये उसका अवस्थित नाम का गुण है। और अरूपाणी जिनमें रूप रस वगैरह नहीं होते हैं वो अरूपी कहलाते हैं। तो सभी द्रव्य सामान्य रूप से अरूपी कहे गए, पर इसमें कोई ये ना समझ लेवे कि पुद्गल भी अरूपी है, तो अगला प्रश्न अगला सूत्र कह दिया रूपिना पुद्गलः, लेकिन पुद्गल द्रव्य रूपी है। सामान्य रूप से शेष सभी द्रव्य अरूपी हैं, लेकिन पुद्गल द्रव्य विशेष रूप से कहने में आएगा अरूपी है। अब जैसे जीव द्रव्य बहुत हैं, पुद्गल द्रव्य भी बहुत हैं, तो क्या धर्मादि द्रव्य भी बहुत हैं? तो कहते नहीं, आकाशादेक द्रव्याणि, धर्म अधर्म और आकाश ये सब एक एक ही द्रव्य है और अखंड है, ये बताने के लिए एक सूत्र लिख दिया। और कैसे हैं ये एक एक द्रव्य के विषय में, अर्थात धर्म अधर्म और आकाश, और कैसे हैं ये? तो कहते निष्क्रियाणि, ये निष्क्रिय है, क्रिया से रहित हैं, इनमें हलन चलन रूप क्रिया नहीं होती कि धर्म द्रव्य को यहां से जाके वहां जाना पड़े। जीव तो मूव करता रहता है, पुद्गल भी मूव करता रहता है, पर ये जो धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य है ये अखंड है और निष्क्रिय भी है। निष्क्रिय का अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनमें परिणमन नहीं होता, वो तो सब्सटेंस की क्वालिटी है, चेंजेबिलिटी विद परमानेंस, तो चेंजेबिलिटी जो उत्पाद व्यय है वो तो इसमें है। कोई ऐसा ना समझे कि इसमें उत्पाद व्यय रूप निष्क्रियता है, वो भी नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, इसलिए इनको नहीं,
अपने आप कोई उसमें बनी होती है जा?
अपने आप तो उनमें उत्पाद
तो हो रहा है,
लेकिन कोई क्रिया नहीं होती, इसलिए निष्क्रिय है, या कि वो अपनी तरफ से किसी क्रिया को नहीं करते। जैसे कुम्हार का जो लिखा है इन्होंने कि कुम्हार मिट्टी को चाक पर रख के घुमाता है तब फिर वो घड़ा बनता है, बिना उसमें क्रिया के उसमें उत्पाद नहीं होता ये चक्की घुमाने वगैरह के बिना, लेकिन ऐसा धर्म द्रव्य इत्यादि में उत्पाद नहीं है, वो स्वतः ही होता रहता है, किसी के द्वारा उत्पाद और व्यय नहीं हो रहा है, ये उसकी निष्क्रियता है। और दूसरा और है इसमें, ये भी ले सकते हैं कि धर्मादि द्रव्य स्वयं नहीं चलते और दूसरे को वे चलाते भी नहीं है, कोई अगर चलना चाहे तो उदासीन रूप से वे उसमें निमित्त बन जाते हैं, इस अपेक्षा से भी उनकी निष्क्रियता है कि बलात् वे किसी को चलाते या ठहराते नहीं है धर्म अधर्म, इस अपेक्षा से भी ले लिया है। असंख्या प्रदेशा धर्माधर्मी की जीवा नाम, अब इन सबके प्रदेश कितने हैं, आपने कहा था कि बहुप्रदेशी हैं, तो बहुप्रदेशी में भी कितने हैं, संख्यात हैं असंख्यात हैं अनंत हैं, तो धर्म द्रव अधर्म द्रव और एक जीव द्रव इनमें असंख्यात असंख्यात प्रदेश होते हैं। ये तो अपन ने पहले ही समझ लिया कि आकाश को पुद्गल का एक परमाणु जितना स्थान ले आकाश में उसको प्रदेश करते हैं कहते हैं, धर्म और अधर्म द्रव जो है संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होकर के रहते हैं, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है, इसलिए धर्म अधर्म द्रव्य जो है असंख्यात प्रदेशी है, जीव भी उतना ही है, एक जीव की अपेक्षा से है, बस ये बात अलग है कि असंख्यात प्रदेशी होते हुए भी संकोच विस्तार वाला स्वभाव है उसका जीव का, तो वो चींटी के शरीर में भी असंख्यात प्रदेश है तो रह जाता है, हाथी के विशाल शरीर में भी जो है असंख्यात प्रदेशी संकोच विस्तार की अपेक्षा से रह आता है। आकाशस्यानंता, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश, यद्यपि आकाश एक अखंड द्रव्य है पर यदि उसे परमाणु के द्वारा नापा जाए तो अनंत परमाणुओं के फैलाव के बराबर हो जाएगा वो, इसलिए उसको अनंत प्रदेशी। इस तरह ये प्रदेश जो है वो एक इमेजनरी चीज है, कहीं कोई अलग अलग वो नहीं है, हमने एक वो की है
इमेजिनेशन की है, फिजिकल कोई इसका काउंटिंग नहीं हो सकता,
काउंटिंग नहीं है, वो इमेजनरी है प्रदेश। पुद्गल में कितने प्रदेश होते हैं, तो संख्या संख्यास्त पुद्गलाना, चार शब्द से यहाँ अनंत ले लेना मतलब तीन हो गए, पुद्गल में संख्यात भी प्रदेश है असंख्यात भी है और अनंत प्रदेश भी है। आशा ये है कि शुद्ध जो पुद्गल द्रव्य है वो तो अविभागी परमाणु है, तो उसमें परमाणु में तो बंधने और बिछुड़ने दोनों की ताकत रहती है, इसलिए परमाणु के मेल से जो है वो स्कंद बन जाता है, अब कोई स्कंद दो परमाणु के मेल से बना है तो वो संख्यात वाला हो गया, कोई तीन चार ये सब संख्या वाले, और कोई कोई असंख्यात होते हैं और कोई कोई अनंत परमाणु के मेल से स्कंद बनते हैं, इसलिए संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश वाला परमाणु है वो पुद्गल है ऐसा उन्होंने कह दिया। नाड़ो लेकिन परमाणु के प्रदेश नहीं होते, एक ही प्रदेश ही है इसलिए नाड़ो कहता, परमाणु के प्रदेश ही नहीं होते ऐसा नहीं, प्रदेश से रहते नहीं, एक प्रदेश ही है इसलिए उसको अणु के प्रदेश नहीं होते, इसका आशय है एक प्रदेश ही होता है सीधा सीधा, जैसे अपन का लिखते हैं या ए लिखते हैं तो वन ए थोड़ी लिखते हैं,
ठीक है वो
टू ए लिखेंगे जब आएगा, ए मतलब वन तो हो ही है, तो इसी तरह यहाँ पर भी है, आकाश के एक प्रदेश के और विभाग नहीं हो सकने से वो अप्रदेशी कहलाता है, ऐसे परमाणु भी जो है एक प्रदेशी है, उसके दो या तीन प्रदेश नहीं होते, ये आशय इसका है नाड़ों का,
मतलब उसको और डिवीजन नहीं कर सकते,
हाँ और डिवीजन नहीं कर सकते,
इंडिविजिबल है वो,
हाँ इंडिविजिबल। लोकाकाशे वगा, धर्म आदि द्रव्य जो है वो सब लोकाकाश में रहते हैं, आकाश तो सर्वत्र है, उसके बीच में जितने भाग में धर्म आदि छह द्रव पाए जाते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं, लोकाकाशे वगाह का अर्थ यहाँ पर अलोकाकाश और लोकाकाश, ऐसा दो तरह का आकाश का विभाजन हो गया, तो जहाँ छह द्रव पाए जाते हैं वो तो लोकाकाश है, उसके बाहर जो अनंत आकाश है वो सिर्फ अलोकाकाश कहलाता है, उसके बाहर धर्मादि द्रव्य का अभाव रहता है। धर्माधर्मियो कृत्सने, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाश में व्याप्त है, जैसे कि मकान के कोने में एक घड़ा रखा है, ऐसा कोई पूरे लोक में धर्म द्रव्य कहीं रखा हो ऐसा नहीं है, वो पूरे लोक में धर्म अधर्म जो है व्याप्त है, कैसे तो कहते तिल में तेल के समान सर्वत्र व्याप्त है, ये अच्छा उदाहरण दिया जाता है अपने यहाँ, तिल में तेल के समान सर्वत्र, किसी एक जगह नहीं है तिल में तेल, सर्वत्र है। एक प्रदेशादिशु भाज्य पुद्गलान, पुद्गलों का जो अवगाह है वो लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर के असंख्यात प्रदेश में हो जाएगा, क्योंकि परमाणु एक प्रदेश ही है और फिर परमाणुओं के मिलने से स्कंद बनेंगे तो वो सब असंख्यात प्रदेश ही बन जाएंगे। असंख्य भागादिशु जीवाना, लोक के असंख्यात में भाग में जीवों का अवगाह है। अर्थात क्या हुआ कि लोक के असंख्यात में भाग करने पर जो एक भाग आए वो असंख्यात्मा भाग कहलाएगा। कम से कम उस एक असंख्यात में भाग में एक जीव रहता है, ये इनका कहना है। क्योंकि सबसे जघन्य जो है सूक्ष्म अवगाहना निगोदी अजीब की होती है, वो भी असंख्यात प्रदेशी है, और लोक के असंख्यात प्रदेश को घेर करके वो अपना उसका वॉल्यूम जो है वो असंख्यात प्रदेश तो होगा ही। लोक असंख्यात प्रदेशी, उसका भी असंख्यात्मा भाग, उतना स्पेस तो चाहिए एक जीव को अपना शरीर बनाने के लिए।
ये सब इमेजिनरी है,
सब इमेजिनरी है सारी चीजें। इस तरह से ये फिर उसके बाद जो अब दूसरी शंका करेंगे वो कि कैसे ये प्रदेश संख्यात और असंख्यात हो जाता है।
इसके लिए एक सूत्र आता है, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। यद्यपि जीव के प्रदेश लोकाकाश के बराबर हैं, पर फिर भी दीपक के समान प्रदेशों का जो संकोच विस्तार है वो होने की वजह से जीव लोक के असंख्यात में भाग को आदि करके और उसमें रह जाता है।
कि गति स्थिति उपग्रह धर्मा धर्मियों उपकार, जीव और पुद्गल की गति रूप उपकार तो धर्म द्रव करता है और स्थिति रूप उपकार अधर्म द्रव करता है। जीव और पुद्गल एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं, है? ये जो गमन करने की सामर्थ्य जीव और पुद्गलों में है अपने आप, लेकिन उस गमन करने में अंतरंग कारण तो वो स्वयं ही होते हैं, पर बाह्य में उनके लिए धर्म द्रव्य आवश्यक होते हैं।
कैटेलेट है,
कैटेलेट तो नहीं कहेंगे,
क्यों महाराज?
क्योंकि वो प्रेरक निमित्त नहीं है, वो उदासीन निमित्त है। इसलिए धर्म द्रव्य सिर्फ उसकी प्रेजेंस जो है, अब क्या है ना कि उत्प्रेरक अगर अपन कह देते हैं तो बहुत सारे उत्प्रेरक होते हैं। एक तो होते हैं जो न्यूट्रल, जैसे MnO2 है, तो वो क्रिया के उसमें उपस्थित रहता है, ना उसको घटता है ना बढ़ता है, ना क्रिया को बाई फोर्स स्टार्ट करता है। तो कई तरह के कैटलिस्ट होते हैं, पर अपन उसको ऐसा नहीं कह सकते। उसको ये कह सकते हैं कि वो एक तरह का सहयोगी है, सहायक बन जाता है।
मतलब इनर्ट कैटलिस्ट भी नहीं कह सकते?
इनर्ट तो कह सकते हैं,
इनर्ट कह सकते हैं, पर कैटलिस्ट
कैटलिस्ट नहीं कह सकते।
इनर्ट आक्रमण ने जो शब्द आया था ना, उस दिन मेरी इच्छा थी आपको बताऊं कि वो इनर्ट जो है
ये ठीक है, इनर्ट कैटलिस्ट तो कह सकते हैं, उदासीन निमित्त जिसको, ये एग्जैक्ट उसका वो टर्म है। इसलिए बाह्य रूप में जो है वो धर्म द्रव्य, कोई अगर जीव और पुद्गल गमन करना नहीं चाहे तो बाई फोर्स उसको गमन नहीं करवाता है, है ना, ये उसमें मुख्यता है। इसी तरह से जो जीव और पुद्गल चौड़ने के लिए तैयार होते हैं, ठहरना चाहते हैं, तो उनको अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायक होता है। इसका उदाहरण भी दिया है कि अगर मछली गमन करना चाहे तो पानी उसके लिए गमन करने में सहयोगी होता है, अगर मछली नहीं गमन करना चाहे तो पानी उसे जबरदस्ती तो गमन कराएगा नहीं। इसी तरह से अधर्म द्रव्य के लिए भी दिया है कि ग्रीष्म ऋतु में अगर कोई थका हारा यात्री पेड़ की छाया में ठहरना चाहे तो पेड़ की छाया उसे ठहरने में मदद करती है, लेकिन अगर नहीं ठहरना चाहे तो पेड़ जबरदस्ती उसको ठहराता नहीं है। इसी तरह धर्म और अधर्म इत्यादि, तो इसमें एक अन्य प्रश्न और उठाते हैं कि वो जमीन और जल वगैरह ये सब भी तो सहयोगी हो रहे हैं गति में और ठहरने में, आप स्वयं ही कह रहे हैं, तो फिर धर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य की क्या आवश्यकता। तो वो कह रहे हैं कि इसमें उत्तर देते हैं कि भूमि और जल वगैरह तो किसी ना किसी के चलने और ठहरने में सहायक है, माने कुछ लोगों के ही है, लेकिन धर्म और धर्म द्रव्य तो सभी जीव और पुद्गल की गति और स्थिति में सहायक होते हैं, इसलिए जो है उनको हमने सामान्य रूप से धर्म और धर्म द्रव्य को गति और स्थिति का कारण बता दिया है। आकाश द्रव्य का क्या उपकार है, तो कहते हैं आकाश श्यावगाहा, सब द्रव्यों को अवकाश देना, स्पेस देना, ये आकाश द्रव्य का गुण है या आकाश द्रव्य का उपकार है। यहां पर एक प्रश्न उठाते हैं, ये अपन उसकी भी चर्चा कर लें कि जो क्रियाशील जीव या पुद्गल द्रव्य है उनको तो अवकाश देना ठीक मालूम पड़ता है, लेकिन धर्मादि तो कहीं आते जाते नहीं है, तो उनको कौन सा स्पेस दे रहा है वो आकाश, ऐसा प्रश्न, क्योंकि वो अनादिकाल से जहां का तहां स्थित है, पूरे लोकाकाश में है धर्म अधर्म। तो उनका कहना है कि समाधान देते हुए कह रहे हैं कि आकाश जो है वो स्वयं भी कहां चलता है, वो भी तो सर्वगत है और वो सर्वत्र पाया जाता है, इसलिए धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी सर्वत्र उसके द्वारा अवकाश को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि लोकाकाश समस्त में है, इसलिए उसको लोकाकाश को ही उस अवगाह देने वाला कह दिया इस तरह से। और जीव और पुद्गल के लिए तो आकाश मुख्य रूप से अवकाश देता ही है। कहते हैं कि अगर आकाश का स्वभाव अवकाश देना है तो फिर मूर्तिक द्रव्य और दूसरे जो मूर्तिमान द्रव्य हैं उनका परस्पर में आघात नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक टेबल को दूसरे टेबल से नहीं टकराना चाहिए। दोनों को स्पेस दे रहा है आकाश समान रूप से, तो फिर ये टकराहट क्यों है बीच में? उसमें मनुष्य दीवार से टकरा कर रुक जाता है, जबकि आकाश को तो स्पेस देना चाहिए सब जगह। तो कहते हैं ऐसा ठीक, ये कहना आपका ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब दीवार से टकराता है तो पुद्गल पुद्गल से टकराया है, आकाश का इसमें क्या दोष है? अब पुद्गल का अपना परिणमन ही इस तरह का है, अगर वो सूक्ष्म रूप से परिणमन करे तो आपस में टकराने की कोई बात नहीं है। तो ये पुद्गल का ही गुण है कि वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप में रहता, आकाश तो सूक्ष्म रूप से सब जगह विद्यमान है। इस तरह से उसका जवाब वो दे देते हैं। अलोकाकाश में तो कोई दूसरा द्रव्य है नहीं, तो फिर वहां पर आकाश ने अवकाश देने की जो सामर्थ्य है वो कहां प्रकट हुई? तो जवाब यही देंगे वो कि भाई आकाश में भले ही कोई द्रव्य अवकाश पा रहा हो या नहीं पा रहा हो, पर उसका स्वभाव तो अपनी जगह पर जो का तो बना रहेगा। खाली मकान में कोई नहीं रहता, तो उसका मतलब है कि मकान क्या स्पेस नहीं देता क्या?
मतलब उसमें कैपेसिटी तो है,
कैपेसिटी तो है, पर उसका उपयोग नहीं हो रहा, उसके व्यक्ति नहीं हो रहे। फिर आगे जो है पुद्गल द्रव्य का उपकार बताते हैं। शरीर वांग मना प्राणा पाना पुद्गलाना, शरीर पचन मन और श्वास उच्छ्वास ये सब पुद्गल द्रव्य के उपकार है। शरीर तो पुद्गल का बना हुआ है, ये बात तो देखने में आती ही है। जो कारमन शरीर है यानी कर्मों का पिंड है, जो आत्मा से बना है, वो भी पुद्गल रूप है। कर्म जो है दूसरे पदार्थों का निमित्त पा करके अपना फल देते हैं, जैसे कि पैर में कांटा चुभने से असाता कर्म का उदय होगा, और कोई अपने रुचिकर पदार्थ अपने को मिल गया तो अपने साता का उदय हुआ। इस प्रकार से जो है जो बाह्य निमित्त हैं उनके द्वारा कारमन शरीर अपना फल देते हुए दिखाई पड़ता है, तो वो भी पौद्गलिक है। वचन, वचन भी एक भाव रूप होते हैं और एक द्रव्य रूप होते हैं। अंतरंग में जो वचन की सामर्थ्य है यशोपसम है, वो तो अंतरंग भाव रूप है, और जो बाह्य में अपन वचन बोलने की जो क्रिया करते हैं वो सब पौद्गलिक है। इस तरह से ये इन्होंने वचन को भी पौद्गलिक माना है। मन में जो विचार करने की गुण और दोष को विचार करने की जो सामर्थ्य है वो भाव मन कहलाता है, और जो बाह्य में पुद्गलों के मन रूप जो एक रचना होती है वो द्रव्य मन कहलाता है। ऐसा मन भी पौद्गलिक ही है। और श्वासोच्छ्वास जो अपन ले रहे हैं, वायु को अंदर ले जाना तो निश्वास कहलाता है, और वायु को बाहर निकालना ही उच्छ्वास कहलाता है। दोनों ही पौद्गलिक है। क्यों? क्योंकि हथेली से अगर अपन नाक और मुंह पर दबाव डालें तो रुकती ही मालूम पड़ती है, तो इससे मालूम पड़ता कि वो
एग्जिस्टेंस है,
एग्जिस्टेंस है और पौद्गलिक है वो। इस तरह से ये पुद्गल जो है वो पुद्गल द्रव्य ही है, जिनके द्वारा अपने को शरीर मन वचन की सामर्थ्य और श्वासोच्छ्वास मिली है। ये पुद्गल का जीव पर उपकार है। पुद्गल द्रव्य का और भी उपकार है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रास, सुख दुख जीवन और मरण भी ये पुद्गल कृत ही उपकार है। जो जीव को इंद्रियों के निमित्त पाकर के प्रसन्नता या कि सुख प्राप्त होता है वो यहाँ पर सुख है, इंद्रियजन सुख।
इंद्रियजन
असाता वेदनी के उदय में जो संक्लेश रूप परिणाम होता है वो दुख है, और प्राणों के संयोग का नाम जीवन है और प्राणों के वियोग का नाम मरण है। तो ये दोनों भी जो है वो आयु कर्म से प्रेरित हैं, इसलिए वो भी पौद्गलिक हैं, पुद्गल के निमित्त से होते हैं। पुद्गल का पुद्गल जीव का ही उपकार नहीं करता, पुद्गल पुद्गल का भी उपकार करता है। जैसे कि राख से बर्तन मलते हैं तो ये पुद्गल का पुद्गल पर उपकार है, या कि फिटकरी डाल देते हैं तो पानी साफ हो जाता है, ये सब पुद्गल का पुद्गल पर उपकार है। लेकिन पुद्गल का जीव पर भी उपकार है। और इस सूत्र में एक विशेष बात सर्वार्थ सिद्धि में लिखते हैं कि हमने पुद्गल का पुद्गल और जीव पर उपकार बताने के लिए पहले सूत्र की रचना की, जो शरीर वांग मनः पाना पाना पुद्गलानाम, लेकिन ये जो दूसरा सूत्र सुख दुख जीवित मरणोपग्रहास्य कहा, इसमें हम उद्गल का जीव पर उपकार तो बता ही रहे हैं, जीव का भी जीव पर यही उपकार है। जीव भी दूसरे जीव के सुख दुख और जन्म मरण में निमित्त बनता है। जैसे पुद्गल जीव के सुख दुख और जन्म मरण में कारण बन रहा है, ऐसे ही हम इस सूत्र से ये भी निकालना पसंद कर रहे हैं कि ये सुख दुख में निमित्त एक जीव दूसरे जीव के भी बनता है, जन्म मरण में भी बनता है। और आगे फिर कहेंगे कि प्योर जीव का उपकार क्या है, तो परस्पर उपग्रहो जीवाना। जीव जो है आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, ये जीव का उपकार है। उपकार कहो या उपग्रह कहो, ये कारी कहो, यहाँ पर ये सामान्य एक अर्थवाची है। यहाँ पर उपकार मतलब भला और अपकार मतलब बुरा, ऐसा भले बुरे का अर्थ नहीं है यहाँ।
अच्छा
हाँ, उपकार से अपने को ये लगता है कि भला करते हैं, हाँ। तो सुख देना तो भला करना है, लेकिन दुख देना कहाँ भला हाँ, करना है हाँ। तो इसलिए यहाँ उपकार का अर्थ जो है उपग्रह या कारी से है कि ये इसमें इस कारी में निमित्त बनते हैं, ये
एक दूसरे की सहायता करते
हैं। हाँ, एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे कि मालिक है, वो धन इत्यादि देकर नौकर की मदद करता है, तो नौकर उसका काम करके उसकी मदद करता है। गुरु शिष्य को पढ़ा करके और उसकी मदद करता है, तो शिष्य गुरु की आज्ञा मान करके और गुरु का सम्मान इत्यादि करके उसकी मदद करता है। इस तरह से ये परस्पर एक दूसरे के लिए निमित्त बनते हैं एक दूसरे के में। ये जो उपग्रह पद दिया हुआ है, इसमें क्लियर किया है उन्होंने, ये बताने के लिए दिया है कि पहले सूत्र में जो बताया गया सुख दुख आदि है, वो भी जीवकृत उपकार है, जो हमने पहले ही आपसे कहा। एक जीव दूसरे जीव को सुख दुख भी देता है, जन्म मरण में सहायक भी होता है, यानी परस्पर म्यूचुअल रिलेशन जो है इनके बीच में है, परस्पर एक दूसरे के लिए सहयोगी है। अब सहयोगी भले में भी हो सकते हैं और बुरे में भी हो सकते हैं,
वो उनके पुण्य पाप के ऊपर
डिपेंड करता है,
कर्म का कैसा फल है।
अब जो है काल का उपकार भी बताते हैं अंत में। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्वे च कालस्य, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व, ये काल द्रव्य के उपकार है। चारों द्रव्यों में जो उत्पाद व द्रव्य होता है उसको कहते हैं वर्तना, प्रतिक्षण होती रहती, प्रतिक्षण होने वाले परिणमन को वर्तना कहते हैं। सभी द्रव्य में अपने अपने पर्याय के अनुरूप प्रति समय परिणमन हो रहा है, बिना किसी बाह्य द्रव्य के निमित्त के ये कार्य होता रहता है, इसलिए वर्तना को जो है वो काल द्रव्य का ही कार माना है। अपने स्वभाव को ना छोड़ करके और द्रव्यों के पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। यहाँ पर परिणाम से अर्थ भाव से नहीं है, यहाँ परिणाम से अर्थ पर्याय से है। तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ करके द्रव्य निरंतर जो है नई नई पर्याय उसमें उत्पन्न होती, वही उसका परिणाम कहलाता है। इसको रिजल्ट भी नहीं कहेंगे, परिणाम का अर्थ यहाँ रिजल्ट भी नहीं है, भाव भी नहीं है, यहाँ पर परिणाम का अर्थ है उसकी पर्याय मॉडिफिकेशन। और जैसे कि जीव के परिणाम क्रोध आदि हैं और पुद्गल के परिणाम रस आदि हैं, तो ये उसका उसकी पर्याय है,
उसके भाव
जो है वो भी उसकी पर्याय ही है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने गमन करने की जो प्रवृत्ति है उसका नाम क्रिया है। ये क्रिया जीव और पुद्गल दोनों में पाई जाती है। अच्छा, जो बहुत दिनों का होता है उसे पर कहते हैं और जो थोड़े दिन का है उसे अपर कहते हैं। तो परत्व और अपरत्व, नया और पुराना, ऐसा है। बहुत दिन का है, हाँ, ये पर मतलब बहुत बहुत दिन का हो गया पुराना, और अपर मतलब अर्वाचीन मतलब लेटेस्ट। तो ओल्ड एंड लेटेस्ट के लिए ये जो इन्होंने दोनों शब्द जो है पर और अपर यूज किए। ये सब काल की वजह से ही होते हैं, नया पुराना तो काल का ही लक्षण है। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, वो उदाहरण मैं आपको बताऊं। इसके पहले एक चीज और है कि काल दो प्रकार का होता है, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। तो जो वर्तना रूप प्रतिक्षण परिणमन हो रहा है हर एक द्रव्य में, वो निश्चय काल है। और जो घड़ी घंटा मिनट सेकंड ये जो काल है जिसको हम नापते हैं वो व्यवहार
काल।
अब ये जो वर्तना इत्यादि का उदाहरण की मैं बात कर रहा था, तो बहुत स्थूल उदाहरण लें अपन कि जैसे चावल को पकाने के लिए रख दिया, तो चावल प्रतिक्षण भात बनने की तरफ प्रक्रिया कर रहा है। ये जो प्रतिक्षण उसमें भात रूप पर्याय बदल रही है वो कहलाती है उसकी वर्तना। और जब वो भात रूप परिणमन कर जाएगा उस पर्याय को कहेंगे परिणाम,
चेंज होने के बाद
चेंज टोटल चेंज, पूरा टोटल चेंज हो गया वो कहलाएगा परिणाम। उस चावल का, चावल का क्या परिणाम निकला, तो वो भात रूप परिणमन हो गया उसका। और वो जो चावल में ऊपर से नीचे तक पकते समय जो प्रक्रिया होती है वही तो क्रिया है, है? और कितनी देर हो गए चावल बने या अभी बना है, ये परत परत हो गया। अगर ऐसा एक उदाहरण में अपन लगाएं तो इस तरह वर्तना परिणाम क्रिया परत और अपरत पांचों को एक ही उसमें समझ सकते हैं कि चावल से भात बनने की प्रक्रिया में वर्तना भी है, परिणाम भी है, क्रिया भी है, नया पुराना भी है, परत भी है। इतना ही रहने दें,
ठीक
है।
चिन्ह द्रव्य के उपकार या किस किस काम में वो निमित्त बनते हैं उनके कार्य बताने के बाद अब जो है उद्गल का क्या लक्षण है ये बताते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, जिनमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाते हैं उन्हें पुद्गल कहते हैं। ये चारों ही गुण सभी पुद्गलों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। एक गुण दिखाई पड़े तो तीन भी शेष उसमें हैं, जैसे कि पानी में कोई गंध मालूम नहीं पड़ती लेकिन मिट्टी पर पड़ते ही साथ उसमें गंध निकलना शुरू हो जाती है। ये एक मोटा सा उदाहरण है कि किसी में अगर कोई चीज नहीं दिखाई पड़े, कोई एक तब भी उसमें वो चारों हैं, उनकी अभिव्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति दूसरे के संपर्क में आने से और आ जाती है। अब जैसे कि अग्नि में, अब अग्नि में जो कास्ट इत्यादि है उनमें क्या गंध है, तो इस तरह एक प्रश्न में चिन्ह लग सकता है कि सभी चारों गुण कहां दिखाई पड़ते हैं, तो एक गुण भी दिखाई पड़ता है तो शेष चार गुण उसमें है। अब स्पर्श जो है वो आठ प्रकार के होते हैं, जो एक सामान्य स्पर्श गुण है वो उसके भी आठ भेद हैं, जिसमें स्निग्ध रूक्ष शीत उष्ण है, कोमल और कठोर, हल्का और भारी। रस भी जो है पांच होते हैं, खट्टा मीठा कड़वा कसैला और चरपरा है। गंध तो सुगंध और दुर्गंध दो प्रकार की है, काला नीला लाल पीला और सफेद, ये पांच वर्ण होते हैं। इस तरह इनके भेद 20 हो गए। तो ये सब पुद्गल के 20
लक्षण
गुण हैं या लक्षण हैं। अब पुद्गल की पर्याय भी विभिन्न रूपों में पाई जाती हैं। वैसे तो देखा जाए तो जितने भी हमें देखने में जो पर्याय आती हैं वो सब पुद्गल की ही हैं। शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोच्योत वंतस्य, शब्द बंध सूक्ष्मपना स्थूलपना संस्थान भेद तम छाया आतप और उद्योत, ये सब पुद्गल की पर्याय है। अब इसमें से शब्द अपन देखते हैं तो भाषा रूप भी होते हैं, अभाषा रूप भी होते हैं। भाषा भी अक्षर वाली भाषा होती है, अनक्षरी भाषा भी होती है। तो जो मनुष्य के व्यवहार में आने वाली जितनी भी बोलियां हैं वे सब अक्षरात्मक और भाषात्मक तो है ही, और पक्षी वगैरह की जो आवाज है, ध्वनि है, वो सब अनक्षर रूप भाषा है, वो भी भाषा है उनकी। अभाषा जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो पुरुष के प्रयत्न विशेष से होती है वो प्रायोगिक कहलाती है, और एक जो है बिना प्रयत्न की होती है वो नैसर्गिक कहलाती है या विसर्गज कहलाती है। तो उसमें भी उनके वो दिए हैं, प्रायोगिक मतलब किसी भी वाद्य यंत्र के द्वारा जो ध्वनि निकलती है वो अनक्षरी भाषा है, या उसको अपन क्या अनक्षरी उसको अभाषा कहेंगे। अभाषा में भी प्रायोगिक इंस्ट्रूमेंट से, और जो मेघों के गर्जन इत्यादि की है वो बिल्कुल वैश्रषिक है या नैसर्गिक है, बिना प्रयत्न के है। अब इन्होंने जो है और भी उसके भेद प्रभेद बहुत सारे किए हैं। इसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रायोगिक भाषा भी चमड़े को मड़कर के जो ढोल वगैरह बनाए जाते हैं उनसे जो शब्द होता है वो तत् कहलाता है, और सितार आदि से जो शब्द निकलते वो वितत् कहलाता है, तो तत् वितत्। और फिर घंटे आदि से जो शब्द निकलते वो घन, और बांसुरी आदि शंख आदि से जो शब्द निकलते वो सुसिर। इस तरह से तत् वितत् घन और सुसिर, ऐसी जो है वो प्रायोगिक रूप से चार प्रकार की अभाषा है। बंध भी दो प्रकार का है, एक वैशेषिक है एक प्रायोगिक है, जो बिना पुरुष के प्रयत्न के स्वयं होता है, जैसे पुद्गल के स्कंध जो स्निग्ध है वो वृक्ष के साथ अपने आप मिल करके बन जाते हैं, बिजली है कड़कती है, इंद्रधनुष बन जाते
हैं,
ये सब जो है वो बिना प्रयत्न के हैं, नैसर्गिक हैं या वैशेषिक हैं, और पुरुष के प्रयत्न से होते हैं है? वो सब बंध प्रायोगिक हैं जो अपन बाइंड कर देते हैं कई चीजों को। भेद दो प्रकार के हैं, उसके भी प्रायोगिक के भी जो है अजीब और अजीब का बंध, लकड़ी और लाख का बंध जैसे होता, जीव और अजीब का बंध, आत्मा और कर्म का बंध है। सूक्ष्म कणापना भी, एक तो सबसे सूक्ष्म है तो परमाणु है, और बाकी सब जो है सापेक्षिक सूक्ष्म है, बेल से सूक्ष्म आंवला है, आंवले से सूक्ष्म वेर है, इस तरह से ही। और स्थूलपना भी, सबसे स्थूल तो है जगत का जो महास्कंध है वो है, पूरा जगत ही सबसे स्थूल हो गया। और आपेक्षिक कैसा होगा, तो बेल से स्थूल आंवला है, आंवले से स्थूल बेल है, इस तरह से। संस्थान का मतलब होता आकार, अब आकार तो गोल चौकोर लंबा चौड़ा कई तरह के होते हैं, ये सब इत्थम भूत कहलाते हैं। और एक अट्रेंडम, ये तो सिमिट्रिकल है, और बादलों का जो आकार बनता बिगड़ता है वो अनित्थम लक्षण वाला है। भेद ये छह प्रकार के होते हैं पुद्गल के, उसमें आरे की लकड़ी से चीरने पर जो बुरादा निकलता है वो उत्कर कहलाता है, ये भी अपन जान लें। गेहूं जो का आटा बनाता है उसको चूर्ण कहते हैं, गड़े के जो टुकड़े हो गए वो खंड कहलाएंगे, और उड़द और मूंग इत्यादि के जो छिलके दाल अलग अलग हो जाती है जो कण की बस्ती, उसको चूर्णिका कहते हैं, और मेघ वगैरह को के पटल जो बन जाते हैं वो स्ट्रेटा जिसको कहते हैं पता, वो पत्ते के समान जो है वो है, और लोहे को गर्म करके पीटने पर जो स्प्रिंग निकलते हैं वो सब अनुचटन वो कहलाते हैं। और ये सब भेद के ही भेद हैं। अंधकार का नाम तम है, और छाया दो प्रकार की होती, एक तो जिस वस्तु की छाया हो उसका रूप रंग ज्यों का त्यों उसमें आ जाता है, जैसे मुख का रंग रूप जैसा है वैसा दर्पण में आ जाता है, एक तो छाया ये भी है, ये प्रतिबिंब रूप है छाया, और एक शैडो पड़ती है धूप में खड़े होने पर हमारा जो छाया मात्र पड़ जाती है, और सूर्य के प्रकाश को आतप या धूप कहते हैं, और चंद्रमा के शीतल प्रकाश को द्योत कहते हैं। ये सब जो है वो पुद्गल की पर्याय हैं। पुद्गल के भेद अणुवः स्कंधाश्च, अणु का अर्थ यहां पर परमाणु है और स्कंध, इस तरह से अणु कहो या परमाणु, और दूसरा भेद है स्कंध, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, अल्टीमेट पार्टिकल, अनडिवाइजेबल, अविभागी जो एक प्रदेश वाला पुद्गल है उसको अणु या परमाणु कहते हैं, और जो स्थूल है जिसे उठाया रखा जा सके वो सब स्कंध है। ऐसे भी स्कंध है जो दिखाई नहीं देते पर वे भी स्कंध है, क्योंकि दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के जो पुद्गल बनता है वो सब स्कंध कहलाते हैं। स्कंध की उत्पत्ति कैसे होती है, तो कहते हैं भेद संघातेभ्य उत्पत्ति। स्कंध जब भी उत्पन्न होता है, भेद संघात और भेद संघात दोनों की एक साथ मिलीजुली प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। स्कंध के टूटने को भेद कहते हैं, भिन्न भिन्न परमाणु या स्कंधों के मिलकर एक हो जाने को संघात कहते हैं, जैसे कि दो परमाणु के मिलने से दो प्रदेशी स्कंध बन गया, इसी तरह तीन चार और बहुत सारे अन्य परमाणु के मिलने से उतने प्रदेश वाला स्कंध बन जाएगा। अब एक स्कंध से दूसरे के मिलने पर और अन्य परमाणुओं के मिलने पर ये सब जो है स्कंद बन गए, ये तो हो गए भेद से भी संघात से भी, और कुछ उसमें ऐड हो गए और कुछ निकल गए, तो टूटने से मान लीजिए कि कुछ थोड़े से उसमें से टूट गए और कुछ दूसरे जाकर उसमें मिल गए, तो ये भेद और संघात। इस तरह से तीनों प्रक्रियाएं होती, भेद से भी बनते हैं और संघात से भी बनते हैं, और भेद संघात दोनों की मिली जुली प्रक्रिया से भी स्कंद बनते हैं, लेकिन भेदाद अणु, अणु की उत्पत्ति तो हमेशा टूटने से ही होती है, संघात से नहीं बनते हैं अणु। निरंतर स्कंद टूटता टूटता जाए तो
अणु बन जाएगा,
तो फिर वो अणु बनेगा। भेद संघात अभ्याम चाक्षुषा, भेद और संघात दोनों की मिली जुली प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले स्कंद ही चक्षु इंद्री के द्वारा दिखाई पड़ते हैं, बाकी दिखाई पड़े ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन आंख से दिखाई देने वाले जितने भी स्कंद हैं वे मिलने और टूटने दोनों की सम्मिलित प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं।
जब नहीं अणु को देख नहीं सकते ऐसा हो गया,
हाँ अणु को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा
नहीं देख सकते,
नहीं पकड़
सकते, इसका मतलब ये हुआ
स्कंद को तो हम देख सकते हैं, लेकिन ऐसे स्कंद जो कि अकेले भेद या अकेले संघात से बने हैं उनका देखने का नियम नहीं है, लेकिन जो भेद और संघात से मनोजन बने हैं वो तो जरूर से आंख से दिखाई पड़ते हैं। यहां पर एक प्रश्न हमने उठाया है कि जो स्कंद अदृश्य है वो दिखाई कैसे पड़ सकता है, वो विजिबल हो जाए, ऐसा कैसे होता है? तो उसका बहुत अच्छा जवाब दिया आचार्य श्री। तो उसका एक वो बता देते हैं कि जैसे अपन ठंड के दिन में और ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करते हैं तो अभी कुछ नहीं दिख रहा था हाथ में, और ऐसे ऐसे करने से वो मैल का गोल गोल बंद करके आ जाता है, ये क्या है? वो दोनों के भेद और संघात के द्वारा उत्पन्न हो गए। तो इसी तरह ये है कि जो अभी तक अदृश्य था केवल भेद से ही कोई स्कंद बने तो वो भी आंख से नहीं दिखाई देता, केवल संघात से, जब दोनों भेद और संघात होता है तो जो नहीं दिखने वाला स्कंद है वो भी दिखाई देता है, अभिव्यक्त हो जाता है। ये यहां पर कहने का, आप कहते हैं कि सद्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि द्रव्य का लक्षण तो सत है, या जो सत है वही द्रव्य है। तो फिर कहते सत किसे कहते हैं? उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत, जो उत्पाद वै और द्रव्य से युक्त है वो सत है। नई नई पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता है, पुरानी पर्याय का नष्ट हो जाना व्यय कहलाता है, और फिर भी उस द्रव्य का बने रहना ये उसका द्रव्य है, है? तो चेंजेबिलिटी विद परमानेंस ये चीज इसमें आ जाएगी। तद्भावा वयम नित्यम, अब जो हमने पहले शुरू में कहा था कि नित्यावस्थितान्य रूपाण्य, द्रव्य का लक्षण नित्य अवस्थित और रूपी है, तो कहती है वहां पर नित्य का अर्थ क्या था? यहां जाकर के उस नित्य का अर्थ बताते हैं कि तद्भावा वयम नित्यम, वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है, यही उसकी नित्यता है। अर्थात वस्तु के स्वभाव का नष्ट नहीं होना उसकी नित्यता है। प्रत्येक वस्तु में परिणमन तो होता है, लेकिन परिणमन होते हुए भी वह वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है, उसकी एक रूपता बनी ही रहती है, वही उसका नित्य बना है। तो देखा जाए तो स्वभाव की अपेक्षा वस्तु नित्य है, लेकिन पर्यायों की अपेक्षा से देखा जाए तो अनित्य भी है, वो परिवर्तनशील भी है। अर्पिता नैपिसिद्धे, कभी हम किसी बात को मुख्य करके कथन करते हैं, किसी को गौण करके कथन करते हैं। वस्तु का कथन तभी सिद्ध होता है जब हम कुछ मुख्य और कुछ गौण करते हैं। मुख्य को अर्पित कहते हैं और गौण को अनर्पित करते हैं। मुख्यता और गौणता से ही वस्तु का कथन संभव हो पाता है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, किसी धर्म को हमें मुख्य करना पड़ेगा, किसी को गौण करना पड़ेगा। इस तरह से यह प्रक्रिया हुई, क्योंकि अब जो है अभी इस स्कंद की उत्पत्ति के बारे में हमने चर्चा की थी पहले सूत्रों में, कि भेद संघात और भेद संघात दोनों की मिली जुली स्थिति इससे उत्पत्ति होती है। तब उसमें एक प्रश्न मन में आता है कि दो परमाणुओं का संयोग होने पर क्या स्कंद बन सकता है क्या, या जो भी स्कंद बनते हैं उनके बनने की क्या प्रक्रिया है, बॉन्डेज किस तरह से होती है? इसके लिए जो है वो यहां पर सूत्र में उसका उत्तर देते हैं, समाधान करते हैं। स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधा, स्निग्धता यानी चिकनापना और रूक्षता यानी रूखापना, इन दोनों के कारण ही जो है पुद्गल परमाणु का परस्पर में बंध होता है।
पॉजिटिव एंड
नेगेटिव इस तरह से इन्होंने, अब सवाल ये है कि किन्हीं पुद्गलों में तो रूक्ष गुण होता है, या किन्हीं परमाणुओं में ले लीजिएगा, पुद्गल का एक भेद है परमाणु, तो किसी परमाणु में रूक्ष गुण है और किन्हीं में चिकनापन है, तो फिर दोनों के, अच्छा इसमें भी जो है स्नेह गुण के भी अभिभागी प्रतिषेध माने शक्ति अंश जो है वो अलग अलग होते हैं, बहुत से होते हैं एक ही में, इसी तरह रूक्ष गुण के भी होते हैं। तो शक्ति का सबसे जो जघन्य अंश है उसको अभिभागी प्रतिषेध कहते हैं। तो एक एक परमाणु में अनंत अभिभागी प्रतिषेध घटते और बढ़ते रहते हैं, ये थोड़ा सा बारीक बात है, उसके आधार पर ये बंद होता है। पर स्निग्धता और रूक्षता यही दोनों परस्पर परमाणुओं के बंद के लिए कारण बनती है। तो क्या सभी परमाणु में आपस में बंद हो जाएगा? तो कहते न जघन्य गुणाना। फिर अगले सूत्र में कह दिया कि जघन्य गुण गुण वाले जो परमाणु हैं उनमें बंध नहीं हो। यहाँ पर गुण से मतलब वही है अविभागी प्रतिषेध,
जो सबसे जघन्य शक्ति है,
जघन्य मतलब अगर उसकी पोटेंशियलिटी कम होगी तो नहीं होगा,
तो नहीं होगा ना। जघन्य गुणा नाम से अर्थ यही है कि बिल्कुल जिसमें कि एक अविभागी प्रतिषेध है उसमें नहीं होगा। जिनमें रूक्षता और स्निग्धता का सिर्फ एक ही अविभागी प्रतिषेध है उसमें नहीं होगा, न जघन्य गुणा नाम से। यहाँ पर शेष में सब परमाणुओं में बंद हो जाएगा। अच्छा, गुण साम्य सदृशा, अगर गुणों की समानता हो तो सजातीय परमाणुओं का बंध नहीं होता,
मतलब पॉजिटिव विल नॉट मीट विद द पॉजिटिव,
पॉजिटिव के साथ में अगर गुणों में समान, यदि बंधने वाले दो परमाणु सजातीय हैं और उनके बराबर अविभागी प्रतिषेध है तो उनमें बंध नहीं होगा। जैसे कि दो स्नेह गुण वाले परमाणु का दो स्नेह गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होगा, इस तरह के अनुरोध दिया। इसी तरह दो गुण रूक्षता वाले परमाणु का दो गुण रूक्षता वाले परमाणु से बंध नहीं होगा। तो कहती है फिर समान वाले का नहीं होगा तो क्या असमान वाले का हो जाएगा? तो फिर उसके जवाब में देखते कि द्वधिकादि गुणानां, तो जिसमें दो गुण अधिक हैं उन्हीं परमाणुओं में परस्पर बंध होगा।
अच्छा।
फिर चाहे वो समान जाति हो या कि विजाति हो।
अच्छा।
हाँ, मतलब इनका ये है कि
इक्वल पोटेंशियलिटी होगी तो नहीं होगा,
नहीं होगा, चाहे दो अधिक होना चाहिए,
इवन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट अगर इक्वल पोटेंशियलिटी है
तो नहीं तो होगा, चाहे वो सजाती भी हो विजाती, और अगर दो अधिक गुण वाले हैं तो फिर सजाती विजाती, ये एक पंथ की प्रक्रिया, इसको कंपेयर नहीं कर सकते बैलेंसी से, या कि इलेक्ट्रॉन और उनके उससे कंपेयर करने,
मतलब साइंस तो ये कही नहीं रहा है ना,
साइंस तो इस तरह की कोई बात नहीं कह रहा, कुछ चीजों में तो इक्वल है, दो अधिक होने पर ही होता है अपडेट पूरा करने के लिए, और कहीं छह हैं और किसी के दो और एक्स्ट्रा मिल गए हैं तो अपडेट पूरा हो गया, वहां तो ये बात बन जाती है कि दो अधिक होने पर ही होगा, पर हर एक में ये बाउंडेज नहीं बनेगी। कहीं पर अब NaCl है तो Na के का एक प्लस और Cl के -7, तो इस तरह से ये अपडेट पूरा हो जाता तो बाउंडेज हो जाती, पर वो नियम यहाँ नहीं लगेगा। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि इनकी बैलेंसी और हमारे अविभागी प्रतिषेध में क्या कोई संबंध है, इस पर अभी कभी विचार तो किया ही नहीं गया। तो यहाँ अविभागी प्रतिषेध की चर्चा है कि अविभागी प्रतिषेध में रूक्ष और स्निग्ध दोनों में अगर सजातीयता होगी, नहीं इक्वल होंगे दोनों तो नहीं होगा। रूक्ष 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 और स्निग्ध, स्निग्ध और स्निग्ध, इस तरह ये बनेंगे विभिन्न प्रकार से, पर उनमें ये होना चाहिए कि दो अधिक गुण वाला होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया है, कोई मान लीजिएगा कि एक गुण स्निग्धता वाला है और दो गुण स्निग्धता वाला है, जब तीन गुण स्निग्धता वाला है उनके साथ में परस्पर बंध नहीं होगा, दो वाला है और चार वाला है तो हो जाए,
मतलब डिफरेंस दो का होना चाहिए,
डिफरेंस दो का होना चाहिए, इस तरह से लिया है। तीन वृक्ष वाले का है और पांच वाले के साथ हो जाए,
दो का डिफरेंस दो का, कम से कम डिफरेंस दो का,
पर एक और तीन के बीच नहीं होगा।
अच्छा,
डिफरेंस दो का है क्योंकि पर वो पहले कह चुके ना जगह में बनाना,
कम से कम दो होना,
कम से कम दो होना, और फिर
चार से शुरू होगा फिर वो,
दो और चार के बीच। अधिक गुण वाले का ही बंध क्यों होता है, समान वाले का क्यों नहीं होता, ये बात इससे आ गई कि भाई अधिक गुण वाले का, तो कहते हैं कि बंधे भी कोई पारणाम कर, क्योंकि बंध होने पर अधिक गुण वाला परमाणु अपने से कम गुण वाले परमाणु को अपने रूप बना लेता है।
अच्छा, म्यूचुअल पोटेंशियलिटी
तो इसमें यदि ऐसा ना हो, और जैसे ने लिखा उदाहरण दिया उसमें कि जैसे वस्त्र में काले और सफेद धागे आपस में संयुक्त होकर भी जुदे जुदे ही रहते हैं, वैसे ही परमाणु भी अलग अलग रहे आएंगे, कभी भी जो है स्कंद नहीं बन पाएंगे अगर वो एक दूसरे को अपने में कन्वर्ट नहीं करें। इसका उदाहरण भी दिया हुआ है कि एक निश्चित सीमा तक दूध में पानी मिलाए जाने पर वो उसके साथ मिक्स हो जाता है, इसी तरह से एक निश्चित सीमा तक गुड़ में और दूध मिलती जाती है, वो गुड़ अधिक है और दूध कम है तो वो उसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि बंदे भी कहो पारणाम दो,